आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने बैन की समाचार साइट्स। दिसंबर तक आपातकालीन की स्थिति को बढ़ाने के लिए चर्चा में विक्टोरियन अधिकारी और ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए राफेल नडाल। अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशकों और उपयोगकर्ताओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार सामग्री को साझा करने या देखने से प्रतिबंधित करने के फेसबुक के फैसले की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। फेसबुक का कहना है कि उसने सरकार के प्रस्तावित मीडिया बार्गेनिंग कोड के जवाब में यह कदम उठाया, जिसमें फेसबुक को अपनी वेबसाइट पर न्यूज़ साझा करने के लिए न्यूज़ एजेंसियों को भुगतान करना पड़ता। आपको बता दें कि मौसम ब्यूरो, स्वास्थ्य विभाग और आग और आपातकालीन सेवा एजेंसी साथ ही साथ दान और सामुदायिक समूहों सहित कुछ महत्वपूर्ण सरकारी सूचना फेसबुक पेज इस प्रतिबंध में फंस गए हैं। संघीय सरकार मंत्री पॉल फ्लेचर का कहना है कि फेसबुक के इस फैसले का समुदाय पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा।
You will not find content on our platform which comes from an organisation which employs professional journalists, which has editorial policies, which has fact-checking processes. That seems a very surprising position and one that is unlikely to be in the long-term interest of their brand.
वहीं फेसबुक का कहना है कि उसने सरकारी पेजों को प्रभावित करने के लिए ये प्रतिबंध नहीं लगाया है और उन्हें जल्द ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में RMIT की प्रोफेसर एना हिक्की मूडी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट बंद करने या साइट के बाहर कंटेंट से जुड़ने के अन्य तरीके खोजने पर विचार करने की अब जरूरत हो सकती है।
Zuckerberg doesn't have Australian backs. He has, you know, his hands in his pocket. It's a capitalist enterprise. And maybe people sort of need a reminder of that. So I think it's really important that Australians take it on themselves to be news consumers and to think about the outlets they're consuming from and to develop those relationships independently. We all need to have responsibility for doing that ourselves.
विक्टोरिया से एक राहत की खबर है कि राज्य ने कोई भी स्थानीय कोरोना मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि होटल संगरोध में एक नया संक्रमण जरूर सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फ्लॉय का कहना है कि आने वाले समय में नए कोरोना मामले सामने आ सकते हैं।
We may well see over the course of coming days potential positives as our close contacts of a number of cases continue to isolate. And we don't rule those out, but if we do see those, it is likely to be in the personal close contacts of family members of people that they share households with who have been isolating and quarantining.
Premier Daniel Andrews का कहना है कि सरकार विक्टोरिया के आपातकाल की स्थिति का विस्तार करने के लिए लगातार स्वतंत्र और छोटी पार्टियों के सांसदों से चर्चा कर रही है। COVID-19 रिस्पॉन्स कमांडर जेरोन वेमर का कहना है कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संदेशों का संचार करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।
I mean, I think it is an important channel for us to communicate to all Victorians. And look, we communicate as many ways as we possibly can, whether it's through face-to-face, frontline operations, through our staff out on the streets, along with our health services, through media conferences such as this, and of course through our website and through our social media pages, Facebook and Twitter amongst them. So good, effective, trusted information on all platforms is a real priority for us.
Greens Party फैमिली रीयूनियन वीज़ाज़ की सेनेट इंक्वायरी पर जोर दे रही है, ये कहते हुए कि इसमें बहुत लंबी प्रतीक्षा अवधि है और इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। डेप्यूटी ग्रीन्स नेता निक मैकम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर रेफरेंसेस कमेटी को जांच के लिए बुलाएंगे। ये बात तब उठी है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रवासन कार्यक्रम को कोरोना वायरस महामारी ने हिला दिया है। सेनेटर मैकम का कहना है कि आवेदकों के लिए एक बेहतर प्रणाली बनाने का ये सही समय है।
Some classes of family reunion visas, people are waiting for many decades to be reunited with their loved ones, and it's keeping families apart and tearing families apart unnecessarily. So we do want to see a system that's fairer. We want to see a system that's a lot faster, that allows families to be reunited far more quickly than they currently are.
आपको बता दें कि पार्टनर वीजा आवेदकों का बैकलॉग फिलहाल 91,000 के आसपास है। गृह विभाग का कहना है कि वीजा पाने के लिए समय सीमा कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आवेदकों की संख्या, जटिल मामलों की संख्या या आय से जुड़े मामले। लेबर पार्टी का कहना है कि वो रक्षा मंत्री लिंडा रेनल्ड्स को ब्रिटनी हिगिन्स मामले पर आज यानी कि 18 फरवरी को सेनेट में 15 मिनट का बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी। पूर्व लिबरल पार्टी की कर्मचारी का कहना है कि 2019 में लिंडा रेनल्ड्स के संसद भवन कार्यालय में एक पुरुष सहयोगी ने उनका यौन उत्पीड़न किया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लेबर नेता एंथनी अल्बनीजी को एक पत्र लिखा है जिसमें संसदीय कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल की समीक्षा के लिए द्विदलीय समर्थन की मांग की है। ग्रीन्स नेता एडम बैंडेट ने कहा कि इन उपायों की सख्त जरूरत है।
There has to be an independent investigation into who knew what and when within the Prime Minister's office and within the government. It is not good enough to have an investigation being conducted by the Prime Minister's own department. There must be an independent arm's length investigation about who knew what when, because at the moment the stories don't add up and it smacks of a cover-up by the government.
अब खबरें भारत से। यूनियन कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स को मंजूरी दे दी है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इसके बाद आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में और अवसर बढ़ेंगे।
कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव पीएलआई को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था। यहीं पर दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आईं और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया, 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। 34,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण सफल प्रयासों के साथ लगातार जारी है, लेकिन यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत में टीकाकरण के साथ साथ सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है।
along with other public health measures to slow down the virus's ability to infect new people and mutate further. Effectively address public resistance to vaccines. Vaccine-related information must be contextual, empathetic, and culturally sensitive while providing scientific and accurate facts to allay the fears and concerns of the public.
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी गुरुवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.49 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत की। अपने 21वें ग्रैंड स्लैम को जीतने के लिए राफेल नडाल को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहद रोमांचक मुकाबले में स्टेफेनोस सेटसिपास ने राफेल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच के शुरुआत में राफेल की जीत लगभग पक्की लग रही थी, लेकिन ग्रीक खिलाड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुए खेल का रुख ही बदल दिया। तीसरे सेट में टाई ब्रेकर के बाद राफेल ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो मैच जीत ना सके।
Moments like this haven't happened a lot in my career. The fact that I was able to come back the way I did and the way I fought against such a top respected player like Rafa was something extra, something I've never felt before. It was epic. It was everything I ever dreamed of.
ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होने के बाद नडाल के फैंस काफी निराश हैं, लेकिन नडाल का कहना है कि वो हार का कोई बहाना नहीं देना चाहते।
I am not the guy that I'm going to find excuses on that or we're going to complain about what happened. No, the only thing that I can do is just keep going. A chance lost, yes, but life continues. I hope to keep having chances. I'm going to keep fighting for it.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले भारतीय स्पिनर आर अश्विन को टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में फायदा मिला है। आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में अश्विन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि टॉप 5 में जगह बनाने वाले अश्विन दूसरे भारतीय हैं। इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट में 161 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 14 में पहुंचने में सफल रहे हैं। अब लेते हैं मौसम की जानकारी और अब बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां पूरे दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड के आसमान में बादलों का बढ़ना जारी रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आसमान साफ रहेगा, यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहाँ आसमान में हल्के बादल रहेंगे। यहाँ के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहाँ दिन में बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंशिक बादल रहेंगे, साथ ही साथ दिन में हल्की बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है, तापमान रहेगा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।